नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। پیارے بچوں سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام علیک
یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ
وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ
وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ۔
پیارے بچوں دنیا کی مقدس ترین کتاب، اتنی بابرکت اور اتنی عظمت والی کتاب کہ جس کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور اگر اس کتاب کو کہیں رکھنا بھی ہوتا ہے تو سب سے اوپر احترام سے رکھتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ بابرکت کتاب ہے۔ اسی کتاب کے بارے میں سننے کے لیے، اس کتاب کی باتیں سمجھنے کے لیے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پروگرام، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ کیا نام ہے؟ بات ہے، نور والی کتاب کا نام آپ نے سن لیا ہے۔ ہمارے پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کن باتوں کا یعنی تجویدی قواعد پہ خیال رکھنا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی ہسٹری بھی جانتے ہیں، اور آخر میں ایک زبردست ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے ایکٹیویٹی؟ وہ کیسا مقابلہ ہے، کون سی ٹیم جیتتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے یا مقابلہ برابر ہو جاتا ہے، وہ تو آپ کو پروگرام کے آخر میں ہی پتہ چلے گا۔ پیارے بچوں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھی درود پاک کی فضیلت۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید کلاس۔
قرآن میرا نور والی کتاب۔
پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، ننھے منے سے قاری صاحب۔ آج ہمارے ساتھ حسب معمول حمزہ بھائی موجود ہیں، اور آپ کو اپنی پیاری سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں، آج بھی سنائیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اس میں کیا سیکھنا ہے۔ جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ
سبحان اللہ۔ پیارے بچوں آپ سن رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت۔ پیارے بچوں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی یا آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، آج ہم نے جس قاعدے کو سمجھنا ہے، پہلا قاعدہ، وہ ہے مد کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہے؟
مد
کا۔ دیکھیں مد کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نا حروف مدہ، وہ تو الگ ہیں، الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ، وہ آپ نے سن لیا ہے اور آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے بعد حرف لین بھی ہوتے ہیں، حرف لین دو ہیں، واؤ لین، یا لین۔ लेकिन आज हम जो स्पेशल मदीना छः उनकी बात कर रहे हैं जिनको एक अलिफ से ज़्यादा खींचते हैं, और वो छः हैं। नाम मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप में से किसी ने फ़ौरन याद कर लिया तो मैं सुन लूँगा, ठीक है। तो एक है मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिस, मद लीन आरिस। कौन सुनाएगा? हैं इतने सारे बच्चे सुनाएंगे, चलें आप सुनाएं, आपके पास माइक है ना।
मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिस, मद लीन आरिस।
जी प्यारे बच्चों, देखें इनको ऐसा नहीं है कि अभी इन्होंने याद किया मुझसे सुन के, बल्कि पहले से याद था, पहले से इन्होंने प्रैक्टिस की होगी, बार बार सुनाया होगा, तो ये कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, मुश्किल नाम हैं, लेकिन याद कर लिए। इनकी डेफिनेशन भी है कि मुद्दे मुत्तसिल क्या है, मुद्दे मुनफसिल क्या है। आज मैं आपको इन छः कायदे में से दो कायदे के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए, मुद्दे मुत्तसिल कब होता है और मुद्दे मुनफसिल कब होता है, ये देखिए, ये एक मद नज़र आ रही है, एक ये निशान नज़र आ रही है, ये होता है मद का निशान, इसे क्या कहते हैं? हाँ, ये मद का साइन है, ये भी मद का साइन है, दो हो गए और भी हैं, ये भी मत का साइन है, और है क्या? हाँ, ये रहा, ये भी मत का साइन है। कितने सारे हैं ना, एक दो तीन चार, चार चार मत के साइन हमें यहाँ पे इजीली नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मत के निशान है, जो मत का साइन है, ये हमारी पहचान के लिए, कि जब भी आप पढ़ते हो यहाँ पर आएँ, और अगर आपकी तवज्जो भी नहीं हो, थोड़ी देर के लिए कायदा आपके जहन से निकल गया है पढ़ते हुए, तो ये जो मत का निशान है, ये साइन आपको याद दिला देगा कि आप रुक जाएँ, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो फिर ज़्यादा खींच के पढ़ेंगे। आपने नॉर्मल पढ़ते हुए नहीं जाना, बल्कि ज़्यादा खींचना है। इसलिए आपने अभी हमजा भाई की तिलावत सुनी ना, इन्होंने पढ़ते हुए जब जब यहाँ पर आए ज़्यादा खींचा, फिर वो यहाँ पर आए इसको भी ज़्यादा खींचा, इसको भी ज़्यादा खींचा, और उसको भी ज़्यादा खींचा। क्यों खींचा है? क्योंकि तीन जगह पर हो रही है मद मुत्तसिल और एक जगह पर मद मुनफसिल। आप कहेंगे इतना मुश्किल, तीन जगह मद मुत्तसिल, एक जगह मद मुनफसिल, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे पहचानेंगे? अभी मैं आपको कायदा समझाऊंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों, हुर्फ मद्दा तो याद है ना, हुर्फ मद्दा तो पता है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो वाव, साकिन से पहले पेश हो तो या साकिन से पहले जेर हो तो
या मद्दा होगा।
तो जब भी बच्चों हुर्फ मद्दा के बाद हमजा नज़र आए, क्या नज़र आए?
हमजा,
हमजा नज़र आ जाए तो आपने ये देखना है कि हमजा वहीं पे ही है, उसी कलमे में है या अगले कलमे में। अगर उसी कलमे में हमजा नज़र आ जाए मद मुत्तसिल, और अगर अगले कलमे में हो तो मद मुनफसिल। आसान हो गया, कितना आसान है ना। अब इतना तो आप समझ गए कि कारी साहब आपने बता दिया, हमने बस हमजा देखना है, हमजा उसी कलमे में, मुत्तसिल अगले कलमे में, तो मद मुनफसिल। लेकिन हमें तो और भी नहीं आती, हमें कैसे पता चलेगा कि हमजा उसी कलमे में है या अगले कलमे में, ये तो और भी लिखी हुई है, ये एक कलमा है या नहीं, या ये दो कलमे, हमें कैसे पता चलेगा? सवाल तो है, सवाल तो वैलिड है। इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसका इतना आसान तरीका है पहचानने का कि हमजा अगले कलमे में है या हमजा उसी कलमे में, वो तरीका है यही, ये मत की जो अलामत है। अगर इस तरह की अलामत नज़र आए ना आपको, बड़ी सी ऐसी अलामत, ऐसा साइन यानी बड़ी सी, तो ये अलामत है मद मुत्तसिल की। किसकी मद?
मुत्तसिल। हाँ,
और ऐसी अलामत नज़र आए ना, ऐसी छोटी सी बारीक सी नज़र आ रही है, फ़र्क है ना दोनों में, इसमें और इसमें फ़र्क है या नहीं?
Yes.
नहीं है?
Yes.
हाँ है भाई, है, है। तो ऐसी छोटी सी नज़र आए तो आप समझ जाए हमजा इस कलमे में नहीं है, बल्कि हमजा दूसरे कलमे में है। देखिए खींचना तो दोनों को बराबर ही है, ऐसा नहीं है कि दोनों के खींचने में फ़र्क है, लेकिन नाम तो अलग अलग है ना भाई। दो भाई हैं, दोनों भाई हैं, दोनों के अम्मी अब्बू एक ही हैं, लेकिन नाम का तो फ़र्क होता है ना। तो इसी तरीके से इसके बाद भी हमजा है, इसके बाद भी हमजा है, खींचना दोनों को एक जितना ही है, कम से कम दो अलिफ खींचना है, कम से कम
दो अलिफ,
लेकिन इसका नाम है मद मुत्तसिल और इसका नाम है मद
मुनफसिल।
अब आपसे पूछता हूँ, कहाँ पर मद मुत्तसिल और कहाँ पर मद मुनफसिल? ये यहाँ, यहाँ क्या है? मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मुत्तसिल, यहाँ पे
मद मुत्तसिल,
मुत्तसिल, यहाँ पे
मद मुनफसिल,
मद
मुनफसिल,
मुनफसिल। कन्फर्म? कैसे पता चला?
छोटी है,
छोटी मद है। लेकिन ये जो छोटी मद आप कह रहे हैं, कारी साहब को नहीं कहना, जब आप सबक सुना रहे होंगे या किसी के सामने कुरान पाक पढ़ेंगे, उनको ये नहीं कहना छोटी मद है, ये सिर्फ आपकी समझने के लिए। आपने कहना यही है कि यहाँ पे हमजा दूसरे कलमे में, वो तो आपकी पहचान के लिए है ना, वो तो आपने पहचाना, पहचानते ही आपने आंसर करना है कि हमजा दूसरे कलमे में। अच्छा यहाँ पे मध्य मुत्तसिल मध्य मुनफसिल मध्य मुत्तसिल है, तो ये आपने कायदा आज ने सीख लिया है। अच्छा एक और बात, अगला कायदा है ये, अगला कायदा है ये इसमें जलालत नेम ऑफ अल्लाह के हा के बारे में, ये अल्लाह पाक का हा है ना, ये रहा भी अल्लाह पाक का हा। अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जब अल्लाह पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, आप बताइएगा मैंने कहीं गलती की या नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, गलती की है? हाँ क्या गलती किया कुछ बता, कौन बता रहा है? हाँ नहीं आपने नहीं बताना भाई, हमजा भाई बता रहे हैं, आप बता रहे थे ना, वो इतनी जल्दी डर गए, मैंने गलती की है, मैंने हाँ क्लियर नहीं किया, मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, ये तो मैंने फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा। आप बच्चों ऐसा होता है कि बच्चे कुरान पाक जब शुरू करते हैं ना, आऊज़ु बिल्लाह भी गलत पढ़ दी, बिस्मिल्लाह शरीफ भी गलत पढ़ दी, कुरान पाक सही पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या भाई, आऊज़ु बिल्लाह भी सही पढ़नी है, बिस्मिल्लाह शरीफ भी सही पढ़नी है। तो आज मैंने पूरी आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं सिखानी, सिर्फ अल्लाह में जो हा है वो बताना है। जब आप अल्लाह पढ़ते हैं तो ये हा वाज़े होना चाहिए, जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमान ही होना चाहिए, बिस्मिल्लाह तो हा ही मैंने स्किप कर दी, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब आप पढ़ेंगे अल्लाह, आखिर में हा साकिन की आवाज़ आएगी, इसी तरह इन्नल्लाह हा फिर काना हा काना, ऐसा नहीं होगा इन्नल्लाह काना इन्नल्लाह काना, मैंने हा नहीं पढ़ा बल्कि आ करके ऐसी पढ़ दिया, तो ये गलती होती है, इसकी तरफ तवज्जो देनी है। प्यारे बच्चों आज आपने दो चीज़ें सीखी हैं, एक मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल, और दूसरी कि हा को हमें हमेशा क्लियर करके पढ़ना है, उसका साउंड हमें सुनाई देना चाहिए। इसी के साथ बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हमारे प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है कुरानिक हिस्ट्री।
कुरान मेरा नूर वाली किताब।
प्यारे बच्चों कुरानिक हिस्ट्री में हम कुरान पाक की स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री सुनते चले जा रहे हैं, और फिर कुरान पाक कैसे नाजिल हुआ वहाँ से हमने पूरी शुरुआत की थी, और हमने लास्ट टाइम ये सुना था कि जो ताबईन का दौर था ना, सहाबा कराम के बाद किनका दौर था, ताबईन का, उनके दौर में फिर तफसीर पे काम हुआ, और तफसीर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई और किताबें भी तैयार हुई, तफसीर पर किताबें भी लिखी गईं। तो स्पेशली ताबईन के दौर में किन लोगों ने तफसीर पे काम किया, तफसीर का मतलब ये होता है कुरान पाक के क्या मायने हैं, कुरान पाक की जो अरबी में नाजिल हुआ है इसका क्या मतलब है, आयत का क्या मतलब है, वो हम आसान करके कैसे समझें। तो कुरान पाक को आसान करके जो हमें समझाया जाता है ना अहादीस की रोशनी में, अल्लाह पाक के फरमान की रोशनी में, इसको कहते हैं तफसीर। क्या कहते हैं इसको,
तफसीर।
तो फिर जिन ताबईन ने तफसीर पे काम किया था उनके नाम भी तो कुछ हमें पता होना चाहिए। आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम में सहाबा कराम के नाम सुने थे कि स्पेशली वो सहाबा कराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत लेकर तफसीर बयान करते थे, तो सहाबा कराम से जिन ताबईन ने तफसीर सीखी और स्पेशली उन्होंने काम किया तफसीर पे, और दीगर ताबईन से सीखकर उन्होंने तफसीर पे काम किया, उनके क्या नाम है, चले मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। एक नाम है हज़रत इब्ने मुसय्यिब, और दूसरा नाम है हज़रत उरवा। कोई से दो नाम आपने याद करने में पूछूंगा, ठीक है, दो तो नाम याद हो जाएंगे ना, तो दूसरा नाम क्या बताया, हज़रत
उरवा,
और तीसरा नाम तो बहुत मशहूर है, इस्लाम के खलीफा भी हैं ये, और खलीफा राशिद, इनका नाम है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। क्या नाम बताया मैंने,
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़।
तीन नाम हो गए भाई, चौथा नाम हज़रत हसन बसरी,
हसन बसरी,
हसन बसरी, और पांचवा नाम है हज़रत सईद बिन जुबैर। क्या नाम बताया पांचवा,
हज़रत सईद बिन जुबैर।
सईद नाम तो सुनता रहता ना, कितना मशहूर नाम है, इनके वालिद का नाम है जुबैर, सईद बिन जुबैर, ताबी था ये। और एक और नाम है, और ये भी बहुत मशहूर हैं, इनकी किताबें भी हैं, इनका नाम है हज़रत इमाम इबन सीरीन, इमाम इबन
सीरीन।
और एक और ताबी हैं जिन्होंने तफसीर पर स्पेशली काम किया है, हज़रत इब्राहिम नखई। क्या नाम,
हज़रत
इब्राहिम नखई। इब्राहिम नाम भी सुनते हैं, लेकिन इनके नाम के साथ आता है इब्राहिम
नकई,
नहीं नकई नहीं, कौफ नहीं आएगा, खा है, नून ऐन या नकई। जैसे हमारे नाम होते हैं ना, थोड़े बड़े बड़े से नाम होते हैं, किसी का सिंगल नाम होता है बिल्कुल, किसी के नाम में दो वर्ड आते हैं, किसी के नाम में तीन लफ्ज आते हैं, तो इसी तरह जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं उनके नाम भी ऐसे होते थे, नाम होता है। तो इसी तरह एक और लास्ट नाम है और वो है हज़रत इमाम शाबी, हज़रत इमाम शाबी, सीन आइन बाया रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये तमाम के तमाम वो बुज़ुर्ग हैं, वो ताबी हैं जिन्होंने तफसीर पर स्पेशली काम किया। अच्छा कोई अब कौन बताएगा, कोई से दो नाम मैंने मुझे बताने हैं आपने। हमजा भाई बताने के लिए तैयार हैं, आप दो हो गए, तीन, इनको माइक दीजिएगा भाई, आपके पास माइक है लेकिन आप बता नहीं रहे।
हज़रत शाफी,
शाफी नहीं शाबी,
शाबी
हाँ, शीन आइन बा और हाँ। हज़रत इमाम शाबी, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत इल्म था उनके पास, लेकिन उनका नाम ये नहीं है, वो ताबी नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने तफसीर पे काम किया था वो है इमाम शाबी। चले शाबाश, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह कह दीजिए एक बार।
सुभान अल्लाह।
अच्छा प्यारे बच्चों, ताबीन का जो दौर था ना, सिर्फ इस दौर में तफसीर पे काम नहीं हुआ, बल्कि ताबीन के दौर के बाद आया था अब्बासी खुलाफा का दौर। अब्बासी जो खुलाफा थे उनके दौर में भी तफसीर पे बहुत काम हुआ, और सिर्फ एक ज़बान में अरबी में काम नहीं हुआ बल्कि मुख्तलिफ ज़बानों में काम हुआ, मुख्तलिफ ज़बानों में, फ़ारसी में, अरबी में, और भी ज़बानों के अंदर जो है ना वो कुरान पाक की तफसीर का काम चलता रहा, और अभी तक कुरान पाक की तफसीर लिखी जा रही है। जैसे उर्दू में हमारे पास बहुत सारी तफसीरें मौजूद हैं। मैं आपको अरबी की कुछ तफसीरों के नाम बताता हूँ। अरबी की एक तफसीर का नाम है अहकामुल कुरान। क्या नाम बताया मैंने?
अहकामुल कुरान।
अरबी में बिल्कुल रियल अरबी में पढ़े, बिल्कुल रियल अरबी में पढ़ेंगे तो ये होगा अहकामुल कुरान। अच्छा किन्होंने लिखी है तफसीर? ये लिखी है हज़रत इमाम अबू बकर अहमद बिन अली जस्सास रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। अच्छा और भी तफासिर के नाम बताता हूँ। एक है रूहुल बयान, ये भी अरबी की है। इसी तरह रूहुल मानी, और भी कई बहुत सारी तफासिर हैं जो कि अरबी में लिखी हुई हैं। उर्दू में भी तफसीर है, बहुत आसान तफसीर है, और उसके ज़रिए से हम कुरान पाक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कोई बता सकता है क्या नाम है उसका? ये मैं बता दूँ, सब हार गए मैं जीत गया। बहुत आसान तफसीर, वो लिखी है मुफ्ती कासिम साहब ने। नहीं पहुंच रहे, मैं बता देता हूं। उस तफसीर का नाम है तफसीर सिरातुल जिनान। क्या नाम है?
सिरातुल जिनान।
क्या नाम?
सिरातुल
जिनान।
सबने कहना है आवाज से एक बार, सिरातुल जिनान,
सिरातुल जिनान,
सिरातुल जिनान,
सिरातुल जिनान।
अब भूलेंगे तो नहीं भाई, कुरान पाक समझना है ना, तो उसके लिए तफसीर का तो हमें पता होना चाहिए। तो हमारी ज़बान है उर्दू, उर्दू में कौन सी तफसीर? उर्दू में सिरातुल जिनान। ये तफसीर है प्यारे बच्चों, ये तफसीर आप भी हासिल करें, आप भी कुरान पाक को पढ़ें, समझें, सीखें, इस पर अमल करें, इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है हमारा कुरान।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ रज्ञान अत्तारी। इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीज़ों का जिक्र है, और फिर इन चीज़ों के बारे में आपसे कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो है एक मुबारक पत्थर जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। आइए इसके बारे में हम कुछ अहम बातें सुनते हैं, और आखिर में ये भी सुनेंगे कि कुरान पाक में इसका जिक्र किस तरह आया है। प्यारे बच्चों, आज से 4000 साल पहले की बात है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की इमारत बना रहे थे। इमारत बनाते बनाते ऐसा हुआ कि दीवारें सर से भी ऊँची हो गई, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर खाना काबा की दीवारों को मुकम्मल फरमाया। और जब आप इस पत्थर पर खड़े हुए तो हुआ यूं कि ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया, और आपका मौजा इस तरह जाहिर हुआ कि आपके दोनों मुकद्दस कदमों के गहरे निशान इस पत्थर पर पड़ गए। आपके कदमों के मुबारक निशान की बरकत से इस पत्थर की फजीलत और अजमत में 4 चांद लग गए। प्यारे बच्चों, 4000 साल से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान इस पत्थर पर मौजूद हैं, और ये पत्थर पहले के ज़माने में हजारों साल से खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर रखा हुआ था। बारिशें भी होती रही, हजारों तूफान भी आए, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ये पत्थर पानी में डूबा रहा, करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा, मगर आप अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि ये सब होने के बावजूद आज तक حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن پیارے بچوں، 1967 سے پہلے مقام ابراہیم کی حفاظت کے لیے اس مبارک پتھر کو ایک چاندی کے صندوق میں رکھ دیا گیا اور صندوق کے باہر سونے کا بلٹ پروف باکس بنا دیا گیا اور آج تک ہم اسے ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یقیناً یہ پتھر اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی اور واضح نشانی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس دو رکعت نماز ادا کرو، یعنی تمہاری نماز تو میرے لیے ہو، تمہاری پیشانیاں تو میرے لیے جھکیں، لیکن مجھے یہ بات پسند ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں، جس پتھر پر میرے خلیل یعنی میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں اس مبارک پتھر اور مقام کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ایک اور جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے جنتی پتھر کے بارے میں سنا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔
اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب اور اس میں ہونے والی ہے ایکٹیویٹی۔ وہ کیا ایکٹیویٹی؟ سب سے پہلے نام سن لیجئے۔ آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اعراب سیکھیں اور لگائیں۔
قرآن میرا نور والی کتاب۔
پیارے بچوں، یہ دیکھیں، ہمارے سیگمنٹ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، یہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے
جی،
اس میں دیکھیں کاف پہ اعراب ہے، تا پہ بھی اعراب ہے، لیکن با پہ کوئی بھی اعراب
نہیں ہے،
نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ جزم، نہ تشدید، کچھ بھی
نہیں ہے۔
تو ہم نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے، یہ ٹیم اے ہے، یہ ٹیم بی ہے، ایک ایک سلیکشن کرتے ہیں ہم اور پھر دونوں کا کراتے ہیں مقابلہ۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ صحیح زیادہ اعراب بتاتے ہیں، جو صحیح جواب دیتے ہیں ان کا یہاں پہ آنسر شو ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس طرح بہت کچھ سیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا پھر؟ ٹیم اے سے نہیں، یہ تو ٹیم بی ہے نا، آپ آ جائیں۔ حمزہ بھائی، ٹیم اے بی دونوں میں جلدی سے آ جائیں، مائک لے لیں۔ اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ آپ وہاں وہاں جائیں، وہاں پہ آ جائیں۔ ٹیم بی سے کون؟ آپ آ جائیں، مائک لے لیجیے، شاباش، آپ یہاں پہ آ جائیں۔ زبردست ہو گیا۔ تھوڑا سا ٹیم اے کے لیے دکھائیے گا کون سا لفظ ہے۔ فل قصاصی، میرے پڑھنے سے آپ نے آئیڈیا لگانا ہے کون سا صحیح لفظ ہے جس پہ اعراب نہیں ہے۔ پہچان گئے؟ فی القصاصی نکالیں، ڈھونڈنا بھی تو ہے پہچاننے کے بعد۔ فی القصاصی، یہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو ایک چیز مل گئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ نہیں، مائک میں بتائیں، مائک ہے اس لیے، کیا آپ مائک میں بتائیں گے؟
زیر،
زیر دکھائیں جی، یہ زیر ہے، زیر اوپر لگے گا، نیچے
نیچے
نیچے دکھائیے گا، زیر ہے نیچے لگے گا۔ فی القصاصی، زیر ہے نیچے لگے گا۔ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے۔ ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ حضرا، رکھ دیں آپ، رکھ دیں، حضرا، میرے پڑھنے سے پہچاننا ہے کون سا لفظ ہے یہ جس پہ اعراب نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟
زبر،
زبر ہے، کیسے آتا ہے وہاں بتائیں؟ بالکل ایسے ہوتا ہے، زبر دکھائیے گا، زبر ہے اور ایسے ہوتا ہے، حضرا، زبر ہے اور ایسا شیب انہوں نے بنایا۔ ماشاءاللہ، ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔
سبحان اللہ،
دو ایک چیز تو آپ نے سیکھ لی ابھی دو لفظوں سے، کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر اور زیر ہمیشہ حرف کے
نیچے۔
ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ، علی المتقین، ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ تو سب میں اعراب ہے، آپ نے پہچاننا ہے، علی المتقین،
قاف پہ نہیں ہے،
قاف پہ نہیں ہے، ڈھونڈ لیں کون سا نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے تشدید نہیں ہے، ہے نا؟
نہیں،
حمزہ بھائی نے شاید کچھ بول دیا ہے، لیکن پتہ نہیں، پتہ چلا ہی نہیں، پتہ چلا۔ जी अच्छा भाई तजदीद निकाल दिए, क्या हुआ आपस रख रहे हैं? हाँ भाई क्या है ये
तजदीद?
तजदीद है ये, क्या हो गया, वापस रख रहे हैं? चले अच्छा ढूंढ लें, कोई बात नहीं ढूंढ लें। यही तो देखें, आपने मेरे कहने पे नहीं जाना, मैं तो कुछ भी कह दूंगा, आपने खुद दिमाग चलाना है कि कौन सा एराब आएगा। मैं तजदीद भी कह सकता हूँ, जज़्म भी। जी क्या है ये?
ज़ेर।
ज़ेर है, ज़ेर कहाँ पे? कौफ के
नीचे,
नीचे ज़ेर है, कौफ के नीचे है, दिखाइएगा। ज़ेर है, कौफ के नीचे है। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। कन्फ्यूज़ हो गए थे, चले कन्फ्यूज़ करना मेरा काम। आप टीम बी, टीम बी के लिए कौन सा लफ्ज़ है? समीउन अली मुन। पता नहीं, शायद जज़्म नहीं आएगा या तजदीद नहीं आएगी, क्या आएगा? एराब सारे हैं इसमें।
जी जी जी
ढूंढ लिया। अच्छा ये जो गोल दायरा बना हुआ है इससे पहचाना, यानी पेश मुड़ा हुआ होता है, लेकिन पेश ऐसे तो नहीं होता, ऐसे होता है यहाँ देखे ना, कहीं पेश बना हुआ है क्या? दो पेश।
जी
चलें, बारह कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बारह देखते हैं जवाब कैसा है, जवाब बताइएगा। दो पेश ही है, बनाने में कुछ मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ से सीख लेंगे। समीउन अलीमुन, दो पेश है। टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। इसको ऐसे पकड़े जैसे आप पकड़ रहे थे। सबसे पहले ये देखें प्यारे बच्चों आप, और उसके बाद यहाँ देखें, ये जो है ना, ये ऐसे गोल सा दायरा, ये होता है नीचे ऐसे साइड पे, उस साइड पे होता है लेकिन नीचे साइड पे होता है, ये वाला होता है ऊपर, ठीक है? अभी भी सही नहीं है, दिखाएं। ये देखें, मैं आपको यहाँ से पकड़ के दिखा देता हूँ, ये देखें, अब नज़र आ रहा है सही? ऐसे होता है दो पेश, कैसे होता है? ये वाला जो दायरा है ये होता है ऊपर इस तरफ, और ये होता है ये वाला पेश, ठीक है? तो टीम बी का जवाब भी हो गया है
दुरुस्त।
तो इस तरीके से माशाल्लाह दोनों ने सारे सवालों के सही जवाब दिए, तो दोनों की दोनों टीमें जीत गई हैं। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह।
आप भी जगह पर तशरीफ रखिए, अल्लाह करीम खुश रखे, शादो आबाद रखे। प्यारे बच्चों, आपने हमारा पूरा प्रोग्राम देखा, बहुत कुछ आपने इससे सीखा होगा। अल्लाह करीम से दुआ है इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान, मेरा नूर वाली किताब।